संडे दिनभर, तारीख 1 मई दिन रविवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। इराक के प्रधानमंत्री ने देश की संसद में घुसकर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। प्रदर्शनकारी कर रहे हैं राजनीतिक सुधारों की मांग। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने का काम है जारी। संडे दिनभर में मुलाकात नजमा हेपतुल्ला से। क्या उन्हें भारत माता की जय बोलने में कोई हर्ज है?
मुसलमान तो मरने के बाद भी उसी मिट्टी में दफन होने वाले हैं, तो उसको हम अगर सलाम नहीं कहेंगे अपनी मादर वतन को, उसकी जय नहीं बोलेंगे, उसको जिंदाबाद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे?
कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दाश से। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने बीते कल देश की संसद में घुसकर पुलिस और सांसदों पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बीते कल हुए प्रदर्शनों में शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र के समर्थक संसद में ग्रीन जोन के गेट के भीतर घुस आए थे और संसद में तोड़फोड़ की। इसके बाद राजधानी बगदाद में इमरजेंसी लगा दी गई थी। इराक से मिल रही खबरों के अनुसार देश के दक्षिण शहर असमावा में 2 कार बम धमाके हुए हैं। धमाकों में अब तक 28 लोगों की मौत हुई है और 35 लोग घायल हैं। एक धमाका प्रांतीय सरकार की इमारत के बाहर हुआ, जबकि दूसरा धमाका एक बस स्टेशन पर हुआ। इस बात का अभी पता नहीं चल पाया है कि हमलों के पीछे किसका हाथ है। 32 ताइवानी लोगों के मलेशिया से चीन प्रत्यर्पण के बाद ताइवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इन लोगों के एक फोन धोखाधड़ी मामले में लिप्त होने का संदेह है। संदिग्ध जब चीन पहुंचे तो उनके मुंह काले कपड़े से ढके हुए थे और हाथों में हथकड़ियां थी। मामले में अन्य 20 ताइवानी नागरिक भी शामिल थे, जिन्हें मलेशिया में 2 सप्ताह पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया था। चीन चाहता था कि संदिग्ध को देश में लाया जाए, क्योंकि जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई थी वे चीनी नागरिक थे। चीन के आपराधिक जांच ब्यूरो के अधिकारी शेन शीक ने कहा,
32
हमने ताइवान में पुलिस के अधिकारियों को 32 ताइवानी संदिग्धों के बारे में बताया है, जिन्हें मलेशिया से यहां लाया गया है। और मौजूदा हालात में हमने ताइवान की पुलिस से गुजारिश की है कि वे जल्द से जल्द अपने अधिकारी चीन भेजें, ताकि इस मामले में हम लोग साथ में काम कर सकें। ये थे चीन के आपराधिक जांच ब्यूरो के अधिकारी शेन शीक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग को बुझाने के लिए राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने के लिए जंगलों के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। उत्तराखंड में 1 महीने से भड़की आग की 1000 से ज्यादा घटनाओं में अब तक 19,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र तबाह हो चुका है। कतर में साल 2022 में होने वाले विश्व कप फुटबॉल के आयोजकों ने कहा है कि वे निर्माण क्षेत्र में एक भारतीय मजदूर की मौत के कारणों की जांच कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि इसका कोई संबंध काम करने के हालातों से है। 48 साल के जलेश्वर प्रसाद दोहा के उत्तर में अलखोर में अलबेट स्टेडियम में काम करते समय बीमार हो गए थे। बाद में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। मानवाधिकार समूह विश्व कप फुटबॉल के लिए तैयार किए जा रहे स्थानों में काम की परिस्थितियों को लेकर आलोचना करते रहे हैं। यमन की सरकार ने हुती विद्रोहियों के राजधानी सना के उत्तर में एक सेना की छावनी पर कब्जा करने के बाद उनके साथ सीधी शांति वार्ता रद्द कर दी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा संडे दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि अभी अभी समाचारों में आपने मानसी दाश से सुना, इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने देश की संसद में घुसकर सुरक्षाकर्मियों और सांसदों पर हमला करने वाले शिया प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बीबीसी संवाददाताओं का कहना है कि अमरीकी हमले और सद्दाम हुसैन की सत्ता के बेदखल किए जाने के बाद ये इराक का सबसे गंभीर राजनीतिक संकट है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए निखिल रंजन से।
देश की राजधानी बगदाद में संसद के बाहर ग्रीन जोन में अभी भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं। शनिवार को हुए प्रदर्शनों के बाद बगदाद में इमरजेंसी लगा दी गई थी। इनमें से अधिकतर प्रदर्शनकारी शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र के समर्थक हैं। बड़े पैमाने पर हो रहे कथित भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए राजनीतिक सुधारों को संसद की मंजूरी न मिलने से ये प्रदर्शनकारी नाराज हैं। विरोध प्रदर्शन करने आए अब्दुल खुदीर अल आब्दी ने कहा, पिछले 13 सालों से हमें अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हम भ्रष्टाचारियों से कहना चाहते हैं कि आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। प्रदर्शन करने आए अब्दुल खुदीर अल आब्दी के शब्द। मौलवी मुक्तदा अल सदर के समर्थक पिछले एक हफ्ते से चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान शनिवार को पहली बार ग्रीन जोन, दूतावासों और सरकारी इमारतों में घुसे थे। मुक्तदा अल सदर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री हैदर अल आबादी मौजूदा मंत्रियों को हटाकर उनकी जगह निष्पक्ष किसी भी गुट से संबंध न रखने वाले तकनीकी विदों को मंत्रिमंडल में शामिल करें। इस मांग को मौजूदा पार्टियों ने मानने से इनकार कर दिया है। इराकी शिया मौलवी मुक्तदा सदर अमरीका विरोधी रहे हैं और उन्होंने मेहदी सेना के नाम से अपना अलग लश्कर भी बनाया था। 2003 में इराक पर अमरीका की अगुवाई में हुए हमले के बाद से मेहदी सेना की अमरीकी और इराकी सेनाओं के साथ कई बार झड़प हुई थी। इसके बाद साल 2007-2008 के करीब 3 साल वे निर्वासन में ईरान में रहे और 2011 में इराकी शहर नजफ लौट आए थे। इधर इन सबसे अलग दक्षिण इराक के अस समावा में हुए 2 कार बम धमाकों में 28 लोग मारे गए हैं और 35 घायल हुए हैं। एक धमाका प्रांतीय सरकार की इमारत में हुआ और दूसरा एक सब स्टेशन में हुआ। धमाके की आवाज सुनते ही लोगों में भगदड़ मच गई और लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। अभी ये पता नहीं चल सका है कि इन धमाकों के पीछे कौन है।
इराक के प्रधानमंत्री ने देश की संसद में घुसकर सुरक्षाकर्मियों और सांसदों पर हमला करने वाले शिया प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए और इस बीच वहां 2 बम धमाके हुए हैं।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की 3री सभा। रुख उत्तराखंड का करते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने का काम जारी है। आग से सबसे ज्यादा जो घटनाएं हैं वो पौड़ी और नैनीताल जिलों में हुई। राज्य का लगभग 2,269 हेक्टेयर क्षेत्र इस दावानल की चपेट में आ गया है। पिछले एक सप्ताह से आग की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। लगभग 1100 घटनाएं वहां पर हो चुकी हैं। कुल मिलाकर बहुत ही प्रचंड ये वहां पर आग का सिलसिला चल रहा है। मैंने पर्यावरणविद अनिल जोशी से संपर्क साधा और पूछा कि ये जो आग लगी है वो आखिरकार कितनी बड़ी है।
इससे पहले भी 1992 में, 97 में, 2004 में, 12 में आग लगी है, भीषण रूप लिया, लेकिन पहली बार ये उत्तराखंड के इतिहास में है कि जहाँ वायु सेना से लेके थल सेना और NDRF सबके सबको झोंक देना पड़ा, क्योंकि आग ने इतना विशाल रूप धारण किया है।
आप पर्यावरणविद हैं, मुझे ये बताइए कि अधिकतर देखा ये जाता है कि जो चीड़ के पेड़ होते हैं या जो सूखे पेड़ दरख्त हैं उनकी वजह से आग लगती है, ये क्यों लगी है आग इतने बड़े भीषण पैमाने पर?
इस बार की 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये है कि इस बार शीतकालीन वर्षा बिल्कुल नहीं पड़ी थी। जब कभी भी विंटर रेन हो जाती है तो उस रेन का फायदा ये होता है कि मॉइस्चर रहता है भूमि में, जंगलों के अंदर, तो इसलिए तत्काल आग उतना भीषण रूप नहीं लेती। दूसरी बात यह है कि इस बार ही मार्च अप्रैल में ही पारा इतना चढ़ गया था, और जब भी पारा चढ़ता है तो उसके 2 प्रभाव पड़ते हैं। एक तो जंगल के नीचे की घास सूखती है, और दूसरी बात यह है कि पत्तियां, चाहे चीड़ की हो चाहे अन्य वृक्षों की हो, वो ज्यादा मात्रा में नीचे गिरती हैं और वो सरफेस फायर का बड़ा कारण बनती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारा जो अभी वन प्रबंधन है, दुर्भाग्य से कि अभी हमारे वनों में ऐसी प्रजातियां हैं ये जंगल की आग को पकड़ती हैं, जैसे कि आपने चीड़ पाइन की बात की है, ये तो मध्य हिमालय में होता है, लेकिन निचले इलाकों में दूसरी तरह से जो खरपतवार है, लेंटाना कुर्री इसको स्थानीय रूप में कहते हैं, ये इस तरह की तेजी से आग पकड़ती है और ये सब एक तरह से भस्म कर देती है। तो ये बहुत से कारण है, दुर्भाग्य से इस बार एक साथ आए, और क्योंकि गर्मी पड़ी इसलिए हवाएं चलती हैं, और आग अगर लग गई तो हवाएं फिर उस अग्नि को दावानल का रूप दे देती हैं।
सवाल यह है कि क्या हमारी तैयारियां एकदम बहुत ही बेकार थी, कमतर थी, क्या था?
देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ समय से लगातार जंगल की आग बड़ा विकराल रूप लेती है, तो हमारी कभी भी कोई तैयारी नहीं होती कि इस तरह के संकट के लिए 3-4-5 महीने से पहले से तैयारियां चलनी चाहिए। अभी वन विभाग के जो अगर हालात देखें तो उसके हालातों के अनुसार 80 हेक्टेयर के बीच में एक फॉरेस्ट गार्ड होता है, फॉरेस्ट फाइटर होता है, ये 3 महीने के लिए लोगों को रोजगार में लगाते भी हैं जंगल की आग बुझाने के लिए। लेकिन इस विकराल रूप के लिए ये कोई तैयारी नहीं कही जा सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि जो घटना पिछले लगातार समय से आ रही है उसका बड़ा कारण है कि स्थानीय लोग वनों पर अपने अधिकार नहीं महसूस करते हैं। वरना आज से 30-40-50 साल पहले जब भी वनों पर आग लगती थी लोग जाते थे बुझाने के लिए, आज उनका अपनापन खत्म हो गया। दूसरी तरफ वन विभाग के पास कोई साफ रोड मैप नहीं होता, कोई मास्टर प्लान हम देहरादून का जरूर बनाते हैं, बड़े शहरों का जरूर बनाते हैं, लेकिन कभी भी हमारे मास्टर प्लान ऐसे नहीं होते कि जो वनाग्नि से हमें बचाएं, हमारे वनों को बचाएं। क्योंकि ये सवाल उत्तराखंड का नहीं है कि वनों का विकराल रूप पूरे देश के बड़े नुकसानों में गिना जाता है कि नदियां यहाँ बनती हैं, प्राण वायु यहाँ होती है, जंगल यहाँ से पनपते हैं, मिट्टी यहाँ से जाती है। ऐसे में ये पूरे देश का बड़ा नुकसान है और ये सिर्फ इसलिए है कि हमारे पास कोई मास्टर प्लान नहीं होता।
मास्टर प्लान कैसे, मतलब उसमें किस चीज की कमी है?
सबसे बड़ी बात तो मास्टर प्लान की ये होती है कि आपको जब मालूम हो कि जमीन में जो आग लगती है वो पत्तियां जो गिरती है उनके कारण लगती है, तो आखिर एक बड़ा प्लान ये क्यों नहीं हो सकता कि हम इन पत्तियों को परंपराओं से हमेशा गांव पत्तियों को हटाते हैं, चीड़ की पत्तियों को हटाते हैं और अपने जानवरों के नीचे बिछाते हैं जो कि अंत में एक खाद के रूप में जाती है, यही रोजगार क्यों नहीं हो गया? उन पत्तियों को हटाकर उनसे बायोमास ब्रिकेटिंग हो सकती है, उसको एनर्जी में उपयोग में लाए जा सकते हैं। तमाम तरह के जो इंस्टीट्यूट इस देश में काम कर रहे हैं वो इस तरह के रिसर्च करके उस जो आग का बड़ा स्रोत है उसको रोजगार में क्यों नहीं पनपा सकते। दूसरी बड़ी बात यह है, मास्टर प्लान ये भी कहता है कि आग बुझाना ही एक रोजगार हो जाए। जो फायर वॉचर रखे जाते हैं युवा लड़के, दुर्भाग्य यह है उनकी संख्या कम है या पिछले बार के ही पैसे आज तक नहीं मिले। तो ये समय है राष्ट्रीय चर्चा का कि हम इन वनों को कैसे बचाएं, और एक ही रास्ता है, गांव की भागीदारी रोजगार के रूप में हो, गांव के हक हकूक पर दोबारा चर्चा होनी चाहिए।
पर्यावरणविद अनिल जोशी आग लगने के कारणों और किस तरह से उससे बचा जा सकता है इसका विश्लेषण कर रहे थे। सीधे कार्यक्रम में रुख देहरादून का करते हैं शिव जोशी के पास। शिव, बहुत ही प्रयास चल रहे हैं सरकारी स्तर पर, ये बताइए कि आग बुझाने का जो काम जारी है उसमें कितनी तरक्की हुई?
मोहनलाल जी, जहां तक अगर तरक्की की बात करें तो आज एक तरह से कहा जा सकता है कि जो पूरा अमला था जिसमें कि NDRF, सेना, वायुसेना, वन कर्मी और तमाम ग्रामीण करीब 6,000 लोग इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन आज उनको एक तरह से निराशा ही हाथ लगी है, मायूसी ही हाथ लगी है, क्योंकि आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आज हवाएं भी चल रही थी और जिस तेजी से हवाएं चल रही थी उस तरह से आग पर जो काबू पाने की जो रणनीति बनाई गई थी वो कारगर नहीं रह पाई। 2 हेलीकॉप्टर बेशक वायुसेना ने भेजे थे लेकिन थी सुबह के समय से ही इतना धुआं हो गया था मोहनलाल जी आसमान पर, पहाड़ों में, गढ़वाल के पहाड़ों में भी और कुमाऊं के पहाड़ों में भी, तो भवाली से जो हेलीकॉप्टर उड़ा उसने तो कुछ छिड़काव जरूर किया वहां पर नैनीताल के जंगलों के ऊपर, लेकिन गढ़वाल में श्रीनगर के पास जो हेलीकॉप्टर था वो वहां पर बिल्कुल उड़ान सुबह नहीं भर पाया। दोपहर बाद करीब 3 बजे के बीच उसने एक सॉल्टी जरूर भरी और कुछ छिड़काव जरूर किया लेकिन वो नाकाफी था मोहनलाल जी।
जी, इस बीच मौसम विभाग का क्या कहना है कि आने वाले दिनों में कुछ मतलब मौसम की ओर से उम्मीद जग रही है?
जी, बस अब एक ही उम्मीद अब नजर आती है कुदरत की ओर से, जैसा कि मौसम विभाग ने भी अपने 5 दिनों का, आने वाले 5 दिनों का जो पूर्वानुमान जारी किया है, तो देहरादून मौसम केंद्र पर मेरी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि 3 तारीख से, 3 मई से हल्की से मध्यम बारिश इन मध्य हिमालय के क्षेत्रों में, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में, जो ये चारधाम वाले जो पहाड़ हैं और जो नैनीताल और पिथौरागढ़ के पहाड़ हैं वहां पर बारिश की संभावना बनती है। अगर ऐसा होता है तो इस पर कुछ काबू पाया जा सकता है, वरना अभी स्थिति ये है मोहनलाल जी कि करीब 2200 हेक्टेयर जंगल तबाह हो चुका है, वन्य जीव अभयारण्यों में जो जंगली पशु है, दुर्लभ प्रजातियां हैं उसकी, वो सब बर्बाद हो रही हैं, वो सब नुकसान हो रहा है उनका बड़े पैमाने पर, और ऐसा लगता है कि अब शायद इनको कुछ या तो और अथॉरिटीज या और विमान।
जी फोन संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि अब शायद जरूरत इस बात की है कि और अथॉरिटीज और जो प्राधिकरण है वो आग बुझाने के काम में जुटे, तभी ये भीषण आग समाप्त हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिव जोशी आपका।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
अब हमने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया आग का, अब सूखे का जिक्र करते हैं। पिछले कुछ महीनों से जारी सूखे से देश के कई बड़े हिस्से जैसे बुंदेलखंड, मराठवाड़ा आदि इलाके बुरी तरह से प्रभावित हैं और लोग इन इलाकों को छोड़कर भाग रहे हैं। किसानों से बात करें तो वो बार बार सवाल उठाते हैं कि क्या सरकार सूखे की भीषण हालात को अभी भी समझ नहीं पाई है लगता है। दिल्ली में सूखे पर आज एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें देश के कई किसानों ने हिस्सा लिया और कुछ विशेषज्ञ भी वहां पर मौजूद थे। विनीत खरे इस सम्मेलन में शामिल हुए, सुनिए उन्होंने वहां से हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
हम इस वक्त हैं दिल्ली में जहां पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ है जहां देश के विभिन्न हिस्सों से किसान आए हैं और सूखे की जो स्थिति है उससे किस तरह से असर पड़ा है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। योगेंद्र यादव भी यहां पर हैं जो स्वराज आंदोलन से जुड़े हुए हैं।
एक तो बैक टू बैक ड्राउट पिछले साल भी था, इस साल भी हुआ और इन दो ड्राउट के बीच में जो एक अच्छी फसल हो सकती थी रबी, उस समय ओलावृष्टि हो गई। तो देश के बहुत बड़े इलाके में एक साथ 3 या 4 फसल बर्बाद हो गई। ये जो है स्थिति को सबसे भयावह बनाता है। यहाँ पे हरियाणा के लोग हैं जो आपको बताएं कि पीने के पानी का भी संकट हरियाणा में। बिहार ने एक भी तालुका को ड्राउट अफेक्टेड डिक्लेयर नहीं किया, जबकि साथ में झारखंड ने पूरे के पूरे राज्य को डिक्लेयर कर दिया, जिले नहीं तालुका नहीं। 6 महीने तक डिनायल में रहने के बाद गुजरात ने पिछले हफ्ते 1 अप्रैल को फाइनली गुजरात ने सुप्रीम कोर्ट की डांट के डर से पहले 500 गांव को किया, फिर 400 गांव को ड्राउट अफेक्टेड डिक्लेयर किया। भारत सरकार ने 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा पेश किया जिससे अचानक पूरा देश जाग गया और काफ़ी चर्चा हुई। आंकड़ा क्या था, भारत सरकार से कोर्ट ने फाइनली पूछा कि कितने लोग अफेक्टेड हैं, हमें बताइए तो सही। तो सरकार एक टेबल ले आई जिसका उन्होंने टोटल तक नहीं किया था, जजेस ने टोटल किया और टोटल था 33.6 करोड़ लोग। उसके अगले दिन हम सब ने बैठ के एक एक जिले और तालुका को जोड़ा जो भारत सरकार ने जिसका जिक्र किया था अपने डॉक्यूमेंट में, हमने टोटल किया तो टोटल बनता है 43 करोड़।
हमारे साथ हैं डॉक्टर कुलदीप कुमार, ये खुद दलित हैं और बुंदेलखंड में रहते हैं। डॉक्टर कुलदीप, ये जो बुंदेलखंड में हम देख रहे हैं इलाके में ज़बरदस्त सूखा की स्थिति है, तो दलित वहाँ पर किस तरह से प्रभावित हैं?
दलित इसमें डायरेक्ट प्रभावित है, सूखा पड़ा है तो सारे लोग अफेक्टेड होंगे, जिसमें दलित ज़्यादा अफेक्टेड होगा क्योंकि उसके पास रिसोर्स कुछ नहीं है, जिसे धनोपार्जन नहीं है जिसकी वजह से वो कुछ कमा सके। जैसे एक दलित अनटचेबिलिटी इस कदर हावी है उस क्षेत्र में कि अगर एक आदमी आलू उगाए दलित समाज का और उसको बेचे अपने गांव में कि बाकी लोग खरीद लें, तो हकीकत यह है कि उसका कोई आलू भी खरीदने नहीं जा रहा, तो उसका श्रम भी नहीं बिक रहा। तो सरकार बड़े लोगों को तो टारगेट करती है लेकिन उसमें दलितों को उस प्रोपोर्शनेट में नहीं जिस प्रोपोर्शनेट में करना चाहिए।
हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पी सैना जो कि कृषि पर भी काफ़ी काम कर चुके हैं। सैना जी, मीडिया से काफ़ी शिकायत है आपको।
इसलिए कि मैं मीडिया पर्सन हूँ, मीडिया से मैं मांगता हूँ कि स्टैंडर्ड तो इम्प्रूव होना चाहिए। जो हो रहा है अभी उसको हमने इवेंट की तरह कवर कर रहे हैं, अरे सूखा हो गया। मैं कह रहा हूँ कि वो इवेंट नहीं है, एक प्रोसेस है।
जो आपने बोला कि जब जहाँ कहीं पानी गिर भी रहा है वहाँ भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसको एक आसान
ये कह रहा हूँ कि पानी का समस्या किसानों का आत्महत्या में एक फैक्टर है, वो डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है,
सोल कॉज नहीं है, सिर्फ एक
कोई भी एक सोल कॉज नहीं है।
इससे पहले योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि वो मई में लातूर से लेकर बुंदेलखंड तक एक यात्रा करेंगे और किसानों की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
तो देश में सूखे की स्थिति पर आज दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित हुआ और ये रिपोर्ट हमें भेजी थी विनीत खरे ने। अब संडे दिनभर में मुलाकात मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला से, और उनसे ये मुलाकात की है नितिन श्रीवास्तव ने।
बीबीसी हिंदी के इस खास इंटरव्यू में आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्स से जो इंडियन पार्लियामेंट से उनका नाता बहुत लंबा रहा है, राज्यसभा उन्होंने तमाम सालों तक चलाई है, खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे और अब नरेंद्र मोदी की बीजेपी गवर्नमेंट में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री संभालती हैं माइनॉरिटी अफेयर्स का। आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में नजमा हेपतुल्ला हैं। पार्लियामेंट शुरू हो चुकी है, एक और सेशन शुरू हो चुका है, विमेंस रिजर्वेशन का जो बिल है महिला आरक्षण का, उस पर अभी तक कुछ नहीं हो सका है, न पिछली सरकारों में न इस सरकार में। अब क्या योजना है, कुछ हो भी सकेगा या नहीं?
देखिए, रुकावटें हमारी तरफ से तो कोई नहीं है। पिछली सरकार ने जब ये बिल लेकर आए तो वो पास हुआ क्योंकि हमने सपोर्ट करा उसको, दूसरे लोग अपोज कर रहे थे, उसके बावजूद हमने सपोर्ट करा और बिल राज्यसभा में से पास हो गया। क्योंकि इसका रेजोल्यूशन जब मैं डिप्टी चेयरमैन थी तो मैंने बीजिंग कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने ही मूव किया था राज्यसभा में। नेचुरली मेरा तो कमिटमेंट है, अगर किसी भी समाज में महिला को उसका बराबर हक नहीं मिलता है तो उस समाज तरक्की याफ्ता नहीं होता। अब राज्यसभा में तो पास हो गया, लोकसभा में मैं समझती हूँ कि हमारी सरकार, हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कोशिश करेंगे कि सब लोगों को ऑन बोर्ड ले आए। मैं चाहती हूँ कि ऐसा मैसेज ना जाए पब्लिक में, उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो इसको अपोज कर रहे हैं कि कुछ लोग महिलाओं के खिलाफ, ये उनके हित में भी अच्छा नहीं
है। जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, एक लोगों में शंका सी रही थी कि क्या होगा इस मिनिस्ट्री में और उस माइनॉरिटी का, क्या आपको लगता है कि माइनॉरिटी अफेयर्स के लेवल पर काम हुआ है वाकई में ग्राउंड लेवल पर?
बिल्कुल हुआ है। और मैंने तो जब ये शंका इलेक्शन से पहले लोग कर रहे थे तो मैंने जब ही उन्हें इस बार का आश्वासन दिया था कि नरेंद्र मोदी ने कितनी 450 तकरीरें तो करी होंगी इलेक्शन से पहले और उनके हर स्पीच में सबका साथ सबका विकास का था। आज तक मदरसों के बच्चों को पिछली सरकारों ने कभी कोशिश ही नहीं की, वो बात खाली करते थे मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा। तो मॉडर्नाइजेशन में आप उनको आप कंप्यूटर दे देंगे, उनको साइंस पढ़ा देंगे, उनको मैथमेटिक्स पढ़ा देंगे, उसका सर्टिफिकेट दे देंगे, मगर उनको कोई ऐसी स्किल तो नहीं सिखा रहे थे कि वो मजहबी तालीम के बाद उनके पास कोई एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड का कोई जरिया बने।
अक्सर ऐसा हुआ है पिछले एक दो सालों में कि आपकी पार्टी के ही बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। कुछ सीनियर लीडर्स ने कहा कि साहब मदरसों में जो है टेररिज्म हो रहा है, चरमपंथ या आतंकवाद हो रहा है। किसी ने कहा साहब जो वहाँ पे जा रहे हैं जो एंटी इंडिया हैं सो कॉल्ड एलिजेडली, उनको दूसरे मुल्क भेज देना चाहिए। तो इस चैलेंज में आप या नरेंद्र मोदी कैसे करते?
मेरे लिए जिंदगी में जो काम मुझे नरेंद्र मोदी ने दिया है या जो काम मैंने इससे पहले भी लिया है, मैंने उसको चैलेंज ही समझ के लिया। ये सब लोगों की धारणाएँ गलत थी क्योंकि पिछली सरकारों से ये सोच आई थी, ये सोच हमारी नहीं थी, ये पिछली सरकारों से आई थी। और मैं एक आपको एक बात बताऊं, नरेंद्र मोदी की सरकार में मदरसे का कोई भी बच्चा आज तक अरेस्ट नहीं किया गया किसी शक शुबे की बुनियाद पे। पिछली सरकार ने, यूपीए सरकार ने कितने बच्चों को, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को अरेस्ट किया था और फिर वो धीरे धीरे छूट रहे हैं। हमारी सरकार ने किसी को नहीं अरेस्ट किया, हम उनको एक अच्छा मुस्तकबिल देना चाहते हैं, एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं।
लेकिन मैम एलिगेशन के लेवल पे बात करें तो लोग ये भी कहते हैं कि साहब इस गवर्नमेंट में समझौता एक्सप्रेस और मालेगांव ब्लास्ट के जो अक्यूज हैं उनके खिलाफ जो है नरमी बरती
सरकार जाने, वो मेरे मंत्रालय से ताल्लुक नहीं है। ना समझौता मेरे मंत्रालय का है, ना मालेगांव मेरे मंत्रालय का है। मेरे मंत्रालय से ताल्लुक जो चीज़ें, मैं उस पर ही अपनी बात करती हूँ और मैं किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होती हूँ।
आपने कहा था कि भारत माता की जय और इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज में आपने कहा आपको कोई परहेज नहीं है उससे क्योंकि ये मुल्क सबका है।
परहेज कैसे हो सकता है, लोग समझते नहीं है ना, लैंग्वेज नहीं समझते। जय का मतलब होता है जिंदाबाद उर्दू में, मादर वतन भारत माता फारसी में मादर वतन कहेंगे, माता मदर मादर, वतन हिंदुस्तान भारत। जिस मुल्क के अंदर हम खुली सांस में हवा लेते हैं, हमें बोलने की इजाज़त है, कोई हमारे मुंह पे ताला नहीं लगा है, इस मुल्क की मट्टी में जो उगता है अनाज जो हम खाते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं, और मुसलमान तो मरने के बाद भी उसी मट्टी में दफन होने वाले हैं, तो उसको हम अगर सलाम नहीं कहेंगे अपनी मादर वतन को, उसकी जय नहीं बोलेंगे, उसको जिंदाबाद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे।
नेशनलिस्टिक और बड़ी पेट्रियोटिक जो आपने बात कही है, मतलब डिबेट्स तो इस आपकी गवर्नमेंट में इंटॉलरेंस पे हो रहे हैं और
नहीं हो रहे डिबेट इंटॉलरेंस पे। जिन्होंने इंटॉलरेंस की बात करी थी, जिन्होंने अपने अवार्ड वापस किए थे, सब ले लिए, सब चुपचाप हो गए। एक एक मौका था, इलेक्शन चल रहे थे बिहार में, कुछ तो कुछ इस तरह की बातें, और ये पुरानी प्रथा है, हमारे यहाँ की नहीं है, ये पुरानी प्रथा है कि जब इलेक्शन होते हैं तो कोई कंट्रोवर्सी शुरू कर दो, झगड़ा शुरू करा दो। तो ये सब उसका एक हिस्सा था। हम सबके लिए काम कर रहे हैं। मेरा मंत्रालय जो है वो पूरे देश में एक विकास के काम अलग अलग मंत्रालयों के जरिए कर रहे हैं, मगर क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अंदर बैकवर्डनेस ज़्यादा थी, उनके यहाँ जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो उसी पिछली सरकार ने बनाई थी और पिछली सरकार ने उन्हें आईना दिखाया था, उसकी रूह से माइनॉरिटी के लोग ज़्यादा पिछले पड़े हैं। तो इसलिए माइक्रो लेवल पे हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। और अभी वेरी रिसेंटली, मुझे लगता है 15 दिन पहले, प्रधानमंत्री ने ये मालूमात मांगी है कि माइनॉरिटी के कितने लोग सर्विसेज में हैं, क्या गैप है, क्या कमी है। मैं यहाँ उस सरकार की एक बात बताऊँ, मुझे एक जॉइंट सेक्रेटरी चाहिए है हज के लिए, क्योंकि वो मुस्लिम होना चाहिए, उस इस लेवल का एक ऑफिसर मुझे नहीं मिल रहा है कि जो मेरे यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी बनाए, ढूंढना पड़ रहा है
अलग अलग सरकारी नौकरियों में और फौज में
कमी है। अब मुझे एक एक से कहना पड़ रहा है प्लीज मुझे एक मुस्लिम ऑफिसर चाहिए, और जगह पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई भी ऑफिसर हो सकता है, मगर हज के लिए उसको जाना पड़ेगा वहाँ देखने के लिए, तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी मक्के और मदीने में। तो आई हैव टू हैव एन ऑफिसर हु इज़ मुस्लिम ऑफिसर, वो नहीं मिल रहा है मुझे। तो मोदी सरकार सबको लेकर चल रही है, बड़ी माइनॉरिटी, छोटी माइनॉरिटी, मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, सबका साथ होता है तभी देश तरक्की करता है।
बहुत बहुत शुक्रिया नजमा हेपतुल्ला अपना कीमती समय बीबीसी को देने के लिए।
नितिन श्रीवास्तव के सवालों का जवाब दे रही थी नजमा हेपतुल्ला। और कार्यक्रम में अब बात करेंगे खेल समाचारों की। आदेश कुमार गुप्त मौजूद हैं। आदेश, आईपीएल?
जी, आईपीएल भी और इसके अलावा बैडमिंटन भी, लेकिन अगर आईपीएल की बात की जाए तो आज राजकोट में थोड़ी देर पहले गुजरात लायंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच खेला गया मुकाबला समाप्त हुआ, और आज पंजाब के किंग्स वाकई किंग्स साबित हुए। उन्होंने गुजरात के लायंस को धर दबोचा और 23 रन से मात दी। आज किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.5 ओवर में 154 रन बनाए। कप्तानी में बदलाव रंग लाया, डेविड बिलर की जगह मुरली विजय को कप्तान बनाया गया, जिन्होंने आज 55 रनों की शानदार पारी खेली। और इससे पहले टीम के कप्तान रहे डेविड मिलर ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 31 रनों का योगदान दिया। जैसे ही बोझ उनके कंधों से हटा, उनके बल्ले से रन निकले। इनके अलावा रिद्धिमान शाह ने 33 रनों का योगदान दिया। और अगर गुजरात लायंस के गेंदबाजों की बात की जाए तो शिविल कौशिक ने 20 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और डेविन ब्रावो ने 33 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इसके बाद किंग्स 11 के गेंदबाजों ने गुजरात लायंस के बल्लेबाजों पर बहुत हद तक नियंत्रण रखा और एक समय तो उनके 5 विकेट केवल 39 रन पर गिर चुके थे। उसके बाद आखिरकार गुजरात लायंस की टीम पूरे 20 ओवर खेलकर 9 विकेट खोकर 131 रन ही बना सकी और 23 रन से उसे हार का सामना करना पड़ा। उधर आईपीएल में आज दूसरे मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलने वाली राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स अपने ही मैदान पुणे में मुंबई इंडियंस का सामना करेगी। ताज़ा समाचार मिलने तक मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। उधर चीन के वुहान शहर में आज समाप्त हुई एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग का खिताब 3री वरीयता हासिल मलेशिया के ली चोंग वेई ने जीता, जबकि महिला एकल वर्ग का फाइनल 6री वरीयता हासिल चीन की वांग यिहान ने अपने नाम किया।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और इससे पहले कि कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। खुद को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी समूह ने इराक के दक्षिणी शहर असमावा में हुए बम धमाकों की जिम्मेदारी ली है। असमावा में हुए 2 कार बम धमाकों में अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है और जबकि 35 लोग घायल हैं। इराक के प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने बीते कल देश की संसद में घुसकर पुलिस और सांसदों पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। 32 ताइवानी लोगों के मलेशिया से चीन प्रत्यर्पण के बाद ताइवान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इन लोगों के एक फोन धोखाधड़ी मामले में लिप्त होने के संदेह हैं। उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग को बुझाने के लिए राष्ट्रीय आपदा रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की मदद ली जा रही है। वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर भी आग बुझाने के लिए जंगलों के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा संडे दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। अगली मुलाकात होगी घटना चक्र कार्यक्रम में, तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।